रवे गौरचंद्राय राधिकाय कदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय वैवास्मै नजिमाया विना सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान के स्वरूप स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणति पुष्पांजलि ज्ञापन कर तत्पश्चात उपस्थित दंडी वैष्णवगण वैष्णवीगण ब्रह्मचारीगण हम सज्जन श्रोता मैं सबसे पहले डोंगरे ब्राह्मण सभा को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने तीन तीन प्रोग्राम यहाँ पर हमारी व्यवस्था की दिन है कि पांच यहाँ पर हमारे जाने के बाद भी तीन दिन होगा दो दिन आज कल
पांच दिन का
हम लोगों ने तीन दिन भागवत कथा और शिव मंदिर में हरि मंदिर में किया और उसी के लगातार में फिर कुछ भागवत की कथाएं सुनाना चाहते हैं। हमने कहा यदि भी हम भगवान श्री कृष्ण को देख नहीं रहे हैं किंतु वे तो हमें देख ही रहे हैं। वे अखिल सृष्टाओं के सृष्टि स्थिति प्रलय करने वालों के भी ईश्वर के भी ईश्वर हैं। शंकर हनुमान ब्रह्मा जी दुर्गा जी गणेश जी ये सब उनके किंकर हैं, दासों के अनुदास हैं। कृष्ण ही स्वयं राम ये सिंह हैं और सब अवतार हैं। तो उनके साथ में कोई संबंध स्थापन कर संबंध तो है ही जीव मात्र का भगवान से क्योंकि हम उन्हीं से निकले हैं किंतु संबंध को हम लोग भूल गए हैं। जो वैसे उच्च कोटि के गुरु हैं उन संबंधों को जानते हैं, उन संबंधों से फिर हमारा संबंध करते हैं दीक्षा और मंत्र के माध्यम से और फिर उस संबंध ज्ञान से युक्त होकर ममता कृष्ण मेरे हैं इस संबंध ज्ञान और ममता के साथ में उनका भजन करने से बहुत शीघ्र ही फल मिलता। भजन के तरीके हैं, कुछ लोग मनमाने ढंग से भजन करते हैं खूब। एक आदमी कॉलेज न जाए, एक्सपर्ट के पास न जाए, दिन रात पढ़ता रहे तो उसे काम नहीं चले, डिग्री प्राप्त नहीं कर सकता, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए उचित तरीके से उचित प्रोसेस से नियमों से हमारा भजन करना चाहिए। ये भजन की प्रणाली ब्रह्मा नारद इत्यादि से चलती हुई अब तक चलती आ रही है। इसलिए उचित तो यही है कि ममता लाने के लिए, किसी से संबंध के लिए किसी योग्य एक्सपर्ट गुरु को हम लोग वर्णन करें। ममता आए बिना, कृष्ण से संबंध जोड़े बिना, मैंने पहले कहा भजन नहीं होता। संबंध तो है, संबंध हम भूले हैं। इसी संबंध के लिए ब्रजवासी जितने हैं, सखा लोग जितने हैं, नंद बाबा यशोदा मैया जितने माता पिता और गांव पास पड़ोस के लोग हैं और गोपियां हैं, सब संबंध से जुड़े हुए। संबंध से ही ममता आती है। ये मेरा शाला है, अब संबंध हुआ तो उसे जुड़ गया ना, तो वो प्रिय हो गया, भाई के समान हो गया। ये मेरी मैया है, ये मेरे पिता हैं। ऐसे भगवान के साथ में पांच संबंध जोड़े जा सकते हैं, जिनमें चार प्रधान हैं। या तो हनुमान जी दास हैं, रामचंद्र जी प्रभु हैं, इष्ट देव। इस तरह से दास और प्रभु का संबंध है, एक सखा और सखा। ये अर्जुन कृष्ण के सखा है, ब्रज के सुबल श्रीराम मधुमंगल इत्यादि सखा है, इनका और प्रगाढ़ भाव। मैया यशोदा का, नंद बाबा का भाव है संबंध, ये मेरा बेटा है। ब्रह्म होने पर भी, पर ब्रह्म होने पर भी, जगत के सृष्टि करने वाले का प्रभु होने पर भी मेरा पुत्र है, इसको शिक्षा दे, उसको बांध देती है, लठिया बेंद दिखलाती है कि मैं मारूं तो चोर बन गया, पीछे नजर में डकैत बनेगा, क्या होगा। उस ब्रह्म को भी शिक्षा दे रही है। ये ममता का प्रभाव, और ये ममता का ही प्रभाव है कि गोपियों ने कृष्ण के लिए अपने पति को छोड़, अपने पतियों को छोड़ दिया, अपने बेटों को संबंध दे, अपने माता पिता भाई बंधु सब, यहां तक कि लोक लाज धर्म सब कुछ कृष्ण के लिए छोड़ दिया, तो कृष्ण उनके ऋणी बन जाए। ऐसे ही कोई व्यक्ति भगवान के लिए, कृष्ण के लिए सचमुच घर बार छोड़ा है, स्त्री पुत्र मैया और जगत की संपदाओं को छोड़ा है, जैसे हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं, देख रहे हैं सन्यासी लोग हैं, सब कुछ छोड़ दिया किसके लिए, कृष्ण के लिए। अब एक बार भी घर नहीं जाते, घर वाले इनके लिए रोते हैं और ये लोग प्रभु के लिए रोते हैं, तो कृष्ण इनके लिए रोएंगे। अभी दर्शन तो नहीं रहे हैं, बात ठीक है, उत्कंठा बढ़ रही है, बढ़ते 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 भजन का बल बढ़ते एक दिन उसको अपना ले। अभी दर्शन दे नहीं रहे हैं, विरह उत्कंठा बढ़ा रहे हैं, ये भी उनकी बहुत विशेष कृपा है। इसी दृष्टि से अब हम दशम स्कंद की कथाओं को अब लेकर चलेंगे, आप लोग सुनेंगे, और कृष्ण से उसी प्रकार से संबंध और ममता जोड़कर पांचों चारों में से कोई एक भाव खूब आनंद से भजन कीजिए। उस समय थोड़ा सा भी भजन करने से वो काम बन जाएगा। जैसे एक आदमी दिन रात भजन करता है किंतु संबंध नहीं है, और दूसरा एक संबंध ज्ञान के साथ थोड़ा भी भजन करता है तो उसका कितना मूल्य है, एक उदाहरण से समझाता हूं। एक रानी है, राज रानी, राजा के साथ में उसकी शादी हुई, उसके घर में एक नौकरानी है, दिन रात काम करती है, किंतु राजा को कौन प्रिय है, रानी प्रिय है ना, वो दासी प्रिय है, नौकरानी। उसको पैसा दे दिया गया और लेकर के चली गई। और पत्नी को पैसा महीना देना पड़ता है, वो तो उनकी अपनी हो गई, वो कोई सेवा नहीं करती और नौकरानियों से सेवा कराती है। बीमार पड़ जाती है तो उसके लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। ये क्यों? यही संबंध है। संबंध क्या है? संबंध
अभी दिया
संबंध जानिया आठ सौ अकार
आश्रय लइया भजे
संबंध लइया के भजे
तारे कृष्ण नाही
डरे उसको कृष्ण नहीं छोड़ते।
और
सब मरे आकार और वो लोग भजन करते हैं किंतु ठीक से भजन नहीं कर पाते। इसलिए इस विषय को समझ करके भगवान का भजन करना चाहिए। अब ममता कितनी किसकी है, कितनी उत्कंठा से भजन ब्रजवासी लोग करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। वे साधक नहीं है किंतु भागवत में उनकी कथाएं इसलिए दी गई हैं, उसको सुनकर पढ़कर विशेष करके श्रवणकर साधु संतों के मुख से हमको भी वैसा ही संबंध और ममता कृष्ण में जगे। इसलिए कृष्ण जगत में आते हैं और अर्जुन को उपदेश देते हैं गीता का, और उद्धव जी को भागवत का उपदेश देते हैं, और अपनी इन लीला कथाओं के माध्यम से बड़े बड़े संदेश हम लोगों के लिए छोड़ते हैं। यदि कृष्ण के साथ में माता पिता का संबंध जोड़ करके कोई भजन करता है, कृष्ण को अपना पुत्र मानता है, तो यशोदा जैसा भाव। कृष्ण ने कहां जन्म लिया? लोग कहते हैं कि मथुरा में जन्म लिया। मथुरा में जन्म लिया यह बात तो ठीक है, किंतु अंश रूप, आंशिक रूप, पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप में कहां? नंद जसोदा के घर में वो पूर्ण रूप से जन्म। आधी रात के समय में भाद्र मास की अष्टमी के दिन देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जिस प्रकार से पूर्व दिशा से सूर्य उदित होते हैं। कैसे प्रकट हुए? बाल गोपाल के बेबी के रूप में नंगे पैदा हुए कि नहीं? नहीं। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके सोने के आभूषणों से मुकुट से युक्त हो करके बड़े सुंदर रूप में प्रकट हुए, धोती इत्यादि पहने, पीतांबर पहने। ऐसा किसी को बच्चा पैदा हुआ कहीं सुना कोई? 16 वर्ष की उम्र जैसा एकदम गर्भ से निकला, और गर्भ का संस्कार जो होता है, गर्भाधान संस्कार, नाड़ी छेद इत्यादि मथुरा में नहीं हुई। ये कहां हुई?
गोकुल में।
गोकुल में यशोदा के साथ। इस तथ्य को लोग जानते नहीं हैं। भागवत में ही ऐसा लिखा है किंतु इतना गूढ़ अर्थ है कि लोग समझ नहीं पाते। तत्रांसेन अवतीर्णो भगवान देवकी सुत अंश के रूप में, किसके अंश के रूप में? यशोदा के गर्भ से जो नंद नंदन यशोदा नंदन जो प्रकट है, प्रकट नहीं बल्कि पैदा हुए। और कैसे पैदा? वहां नाड़ी छेद हुआ, उत्सव हुआ बहुत। नंद बाबा ने लाखों गायें दान की, सबको स्नान कराया गया यशोदा को, इसलिए वहां पर पूर्ण। वो दो जगहों की तो बात क्या, करोड़ों जगहों में वो एक साथ में हो सकते हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। ऐसा मत सोचिए ये यही एक जम्मू है, यही एक भारतवर्ष है, और यही एक बोध पृथ्वी या विश्व है, ऐसा मत समझिए। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में एक भारत वर्ष है और उसमें एक वृंदावन है, गोकुल है, और उसी के अंदर में यहाँ पर एक जंबू भी होगा उस ब्रह्मांड में। ये जंबू वाला छोटा है या ब्रह्मांड जो गोकुल वाला है सबसे छोटा है, और यहाँ पर सबसे छोटे ब्रह्मा जी चार मुख वाले रहते हैं और ब्रह्मांडों में करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा वहां पर रहते हैं। उनकी उनका ऐश्वर्य इतना है, चिंता करते करते पागल हो जाएंगे तो अभी कोई था आदि अंत नहीं मिलेगा। ब्रह्मा भी ऐसे करते 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 थक गए और अंत में प्रार्थना करके बोले, जो कहते हैं कि मैं ब्रह्म का, पर ब्रह्म का, कृष्ण का ऐश्वर्य जानता हूं, वे भले ही पृथ्वी की धूली को गिन सकते हैं, पृथ्वी को धूली को गन्ना सहज है, और आकाश के समस्त तारों की गिनती कर सकते हैं भले ही, किंतु भगवान के ऐश्वर्य की लीलाओं का कोई था नहीं उनको मिलता ऐसे। तो इसलिए करोड़ों कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में अभी उनकी लीला चल रही होगी, और एक लीला एक स्थान से चल करके फिर उसी स्थान पर पहुंचती है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। बड़ी अद्भुत चीजें हैं। यदि इस मनुष्य जीवन में हमने भगवान का भजन कर दिया तो ठीक है, और नहीं तो ब्रह्मा का एक दिन और हमको खोना पड़ेगा, इसके बीच में और कोई ठहराव नहीं। ये समझिए, घूमते रहेंगे। एक कहानी है, कोई एक भीख मांगता हुआ किसी जगह गया तो देखा, देखा नहीं वो एक दरवाजा मिला तो दरवाजे में घुस गया और भिक्षा दो अथवा राधे राधे कोई कुछ कहने लगा, किंतु कोई उसमें मिला नहीं जो उसको भिक्षा दे, और उसका अंदर 84 लाख मील लंबा चौड़ा था ही नहीं पा सका, वो चलने लगा, जन्म न जन्मांतर चलते 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 चल चल जब दरवाजे के सामने आया, 3.5 हाथ का दरवाजा था, जो ही आया उसको खुजलाहट हुई, सिर में खुजलाने लगा और सोचा जे इतने दिनों तक दरवाजा नहीं आया तो आज ही थोड़े आ जाएगा अभी एक मिनट, और वो खुजलाने लगा, दूसरे हाथ में डंडा लेकर के चलने लगा, इतने में दरवाजा पार हो गया एक सेकेंड में। फिर हाँ सर, ऐसे समझो मनुष्य ने भगवान दिया है 84 लाख योनियों के बाद में, और इस जन्म में भजन नहीं किया न कि गधे घोड़े सुअर न जाने क्या होंगे, न देवता होंगे, गंधर्व होंगे, क्या होंगे, फिर मनुष्य जन्म नहीं होगा। देवता लोग भी मनुष्य जन्म पा करके इस भारत वर्ष में जन्म लेना चाहते हैं। मैं संसार में सर्वत्र कोने कोने गया, कई भगवान का भजन का कोई भी चिन्ह लक्षण नहीं है, और इसीलिए वे करोड़पति हैं। भारतवर्ष के धनी लोग क्या है, बिरला टाटा कुछ नहीं, उनके नौकर होने योग्य है, उनकी एक दिन की आयु है जितनी इनके जीवन की आयु हो, और सुखी नहीं है सुन करके इस घर में आते। इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, हरी कथा सुन रहे हैं, और समय नहीं है नष्ट मत कीजिए, न जाने कब मृत्यु आ जाए, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब प्रलय, पल में प्रलय होएगी बहुत करोगे, इसलिए इस प्रकार से। अब कृष्ण ने गोकुल में जन्म लिया, जो सोदा जी की ममता कैसी है कृष्ण के प्रति नंद बाबा की, इसको थोड़ा सा समझने के लिए पुतना का उद्धार का उपाख्यान आप लोग सुनिए। हमारे तीर्थ महाराज जी आपको संक्षेप में सुनाएंगे, सभी लोग संक्षेप में बोलने की चेष्टा करें। उपाख्यान और उपाख्यान का तात्पर्य बताओ।
पार्षद परिकर हैं, वे प्रेम पूर्वक कैसी सेवा करते हैं, जिस सेवा के द्वारा भगवान को स्वयं आनंदित करते हैं और भगवान स्वयं उनसे आनंदित होते हैं। इसलिए प्रेम पुरुषोत्तम की लीला भूमि है ब्रजभूमि। भगवान श्री कृष्ण जो है 16 तलाओं में परिपूर्ण है, लीला पुरुषोत्तम है, रसोमयी से है। वे अपने गुणों के और माधुर्य के तथा ऐश्वर्य के पराकाष्ठा है, उनके खान है। भगवान के पास में, कृष्ण के पास में जो कोई व्यक्ति जैसे भी आए हो, कोई कैसे भी आए, उन सबको उन्होंने अपनाया, क्योंकि कृष्ण है। कृष्ण शब्द की उत्पत्ति करते हुए बताया जो कि कृष्ण वाचक शब्द नश्चन होते वाचक, जो सर्वाकर्षक है, विश्व के चुंबक है, सबको आकर्षण करके रखे अपने रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी और वेणु माधुरी। इस प्रकार माधुरी की जो माधुर्य की पराकाष्ठा चमत्कारिता है, उन गुणों के खान भगवान ने सबको आकर्षित कर रखा और सबको आनंद प्रदान करते हैं, सबको आनंदित करते हैं। जीव जब बहिर्मुख है, माया में संसार में भूले हुए हैं, भटके हैं, तब उसके अंदर सुख की लालसा, भोग की वासना होती है, तब विषयों की ओर दौड़ते रहते हैं। भगवान जो है पूर्ण चेतन है, वे जीवों के अंदर उस चेतना को प्रदान करते हैं। जब जीव उन्मुख होता है भगवान के प्रति, उनका भजन करने लगता है, तब उनको कृष्ण भक्ति रस प्राप्त होता है और उस भक्ति रस में वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, पूर्ण चेतना का विकास होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की है क्या है, सबके आनंद प्रदाता, सबके अंदर चेतना को जगाने वाले, परंतु हम भूले भटके हुए। इसलिए शास्त्र पुनः पुनः हमें उपदेश देते हैं, भगवान कृष्ण कैसे दयालु हैं, जिनके गुणों का परिचय देते हुए कहा, अहो बकीजम स्तर काल कूटम जिघम सय स्तन में कालपुर विष लगा करके आए, जो पूर्व जन्म में पहले जन्म में बलिराज की कन्या थी रत्नमाला के रूप से। जब भगवान वामन देव आए छोटे से गौना कटु, उस बालक को देख करके ऐसी मुक्तसी हो गई, उसके अंदर स्नेह ममता आ गया कि इस बालक को गोदी में ले करके दूध पिला, परंतु हो नहीं पाया कि उनके पिता के साथ साथ उनको पैर धुलाए चौरा में पिया पिया अर्चना की और बात करने लगे, मौका नहीं मिल पाया। जैसे वामन देव ने त्रिविक्रम रूप धारण किया, सारा राज्य छीन लिया और बलि महाराज को नाग पास में बांध दिया, उस समय रत्नवाला बोली, बारे ऐसा दुष्ट है, ये विष्णु है, हमारे पिताजी का सारा सब कुछ छीन लिया, नाग पास में बांध दिया, मैं पहले जाति को स्तर में विष लगा करके इसे मारता। भगवान जी का अच्छी बात है, तुम्हारी भावना है, इस भावना को अवश्य पूरा करूंगा। उतना वही उतना बन करके आए स्तन में कालपुर विष लगा करके, और जबकि इतने सुंदर रूप धारण करके माता का वेश धारण करके जब अंदर पहुंची तो किसी ने कोई भी रोका नहीं। माधव सुधा ने सोचा, इतनी सुंदरी क्या ये ब्रह्माणी है, रुद्रानी इंद्रानी लक्ष्मी कौन है, जैसे भी हो देखने में जितना सुंदर लग रहा है, जैसे हमारा बालक है वैसी ये स्त्री भी वैसी सुंदरी, इसके मां होने योग्यता नहीं है। तो इतना उसके प्रति गर्वबोध करने लगे। देखते देखते पुतना ने उस बालक को गोदी में उठा लिया और बड़े आदर के साथ लाल प्यार के साथ में स्तनों में मोह लगा दिया। तो यशोदा बोली, चलो लाल प्यार कर रही है तो अच्छी बात है, मैं तब तक के कमरे में से घूम के आऊं, कोई काम के लिए चली गई। जैमिनी गई और इधर पुतला ने जो कि कालकूट विष लगा रखी थी वह मुंह में लगा दी। बाल गोपाल ने सोचा, अच्छा तो कालकूट विष भक्त लोग तो फल फूल मिठाई ये सब हमारे लिए उपहार लाते हैं, अब तुमने हमारे लिए उपहार लाया कालकूट विष, कोई बात नहीं उसको मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु इस पाप शरीर से मैं तुम्हें छुड़ा करके ऐसी एक उत्तम गति प्रदान करूंगा जो कि संसार के सभी लोग चमक जाए। वही हुआ, पुतला को जंतना के मारे छोड़ छुड़ाने का प्रयास किया, कर नहीं सकी। उस समय जंतना में छटपटाती हुई उस बाल गोपाल के साथ में एकदम बाहर निकल आए, बड़ी विकराल मूर्ति में विशाल, जिसको भागवत में वर्णन करते हैं जिसका शरीर 12 मील लंबी चौड़ी कंस के आम की बगीचा थी। तो जाकर के गिरे तो गिरे एकदम बगीचे के ऊपर में, बोले लकड़ी भी किसी को ढोना नहीं, साथ में लेकर के ही एकदम गिरे, धड़ाम से गिरे, गिरते ही बच्च जैसा आवाज हुआ और बड़ा आंधी तूफान मच गया, चारों और कड़कड़ाहट की ध्वनि से गूंज उठा, सभी लोग चमक उठे, ये क्या हुआ, कहां से इतनी जोर की आवाज आई, सभी लोग दौड़ पड़े। माँ यशोदा भी बाल गोपाल के लिए बड़ी विकल्प होकर रोने लगी। इतने में ब्रजवासी लोग दौड़ करके गए और पुतना के वक्ष स्थल से बाल गोपाल को उठा के लाए, कृष्ण को जो कि माता यशोदा के गोदी में थी उन्होंने दूध पिलाया तो भी चैन नहीं, उसको रक्षा कवच पाठ करते हुए गोबर गोमूत्र से स्नान कराते हुए शुद्धि संस्कार आदि करने लगे, कहीं बालक को किसी प्रकार कोई अनहोनी न हो जाए। इधर में पुतना जो कि बाल घातिनी राक्षसी रुधिर आसना जिघाम छयापी हरई स्तनम दत्या को सर्व, वह पुतना जो पूत नहीं है सदा ही अपवित्र है, अथवा जिसके कोई बालक है ही नहीं, दूसरे बालकों को मारने वाली खून पीने वाली ऐसी जो राक्षसी पुतना जो पाप शरीर में थी, बाल कृष्ण ने उनको अपना लिया, उस पाप शरीर से छुड़ा करके धात्री जैसी माता की गति गोलक वृंदावन में दे दी। जिघांस से आप वो भी मारने के लिए आए जो माता का वेश धार अपने पुतना जैसी राक्षसी को एक धात्री गति दे दे, तो आपके जो भक्त जन भक्ति पूर्वक आपकी सेवा पूजा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, उनको आप क्या देंगे? इन ब्रजवासियों को आप क्या देंगे? आप तो स्वयं अपने को भी बेच डाला, उनको सर्वस्व समर्पण कर दिया। इसमें तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, आप भक्तों को क्या देंगे? जो महान प्रेमी भगवान श्री हरि प्रेमोमय लीला करते हैं, वे अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पण किए, भक्तों के पास में अपना सर्वस्व समर्पण कर देते। अब यह आपने सुना था ब्रह्मा की कथा, जो कि जो ब्रह्म रुद्र शूर्प नारद भीष्म मुक्तय रामचित न सहसा पुरुष सत बची करण चूर्ण मनंत सत्य तम श्री राही का परिचरा में कदा। जो कि ब्रह्मा रुद्र शूर्प नारद भीष्म प्रमुख महाजन बड़े बड़े महाजन ब्रह्मा जी रुद्र महादेव जी है और सुखदेव गोस्वामी बड़े बड़े नारद जी जैसे वे लोग ब्रजभूमि में आए। ब्रह्मा जी की लीला देख करके भगवान की लीला देख करके मुक्त हो गए। जबकि अघासुर जो पाप की मूर्ति उसके मुंह के अंदर चले गए, जो कि कमल नयन है, जिनके चरण कमल अतिशय सुकमल है, जिनकी सुंदर भुजाएं हैं, जिनके मंद मुस्कान है, जिनके गले में बनमाला है, जिनके पहनावे में पीताम्बर स्थिर बिजली जैसे इस प्रकार दिव्य कांति भुवन मोहन, जो कि बाल गोपाल रूप में बच्चों के साथ में खेलते खेलते उस पाप के मूर्ति और हसन के मुंह में चले गए और न जाने अंदर में जा करके कैसे हाथ की गोला या लोहे की गोला अटक गए गले में और वो सांप कुछ पछाड़ के पछाड़ दे और प्राण प्रत्यय उड़ गया, उसकी आत्मा दिव्य ज्योति के रूप में निकल के आकाश में चली। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जबकि बालकों को लेकर के बाहर आए तो ब्रह्मा जी ने देख करके प्रार्थना की, हमें भगवान की लीला देखनी है कि मुक्त जो पापी भी पाप भी स्वयं मुक्त हो जाए, उनकी लीला देखने के लिए आए। ऐसे ब्रह्मा जी जब भगवान की ऐश्वर्यमय लीलाओं को देखा, कुछ बच्चों को और सखाओं को चुरा लिए, धंधा में छिपा दिए, एक बरस तक चले गए और उस समय भगवान ने जितने बछड़े और सखा थे उन सब के रूप में वैसे प्रकट हो करके लीलाएं करते रहे, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। एक बरस बाद में आकर के तंद्रा के ढक्कन खोल करके देखा, ज्यों के त्यों बच्चे सब बछड़े सब सोए हुए हैं, उनको जगाया, उनको निकाला और वे सब दौड़ करके गए कृष्ण के साथ में उन सखाओं के बीच में मिल गए। उस समय ब्रह्मा जी ने बार बार प्रणाम करते हुए एक एक बार देखते हैं अद्भुत अद्भुत ऐश्वर्य, जितने भी मूर्तियां हैं सभी कृष्ण ही कृष्ण बने हुए हैं। एक बार देखते हैं सभी चतुर्भुज रूप में बने हुए हैं। एक बार देखते हैं आलम्ब स्तंभ सभी कृष्ण के हाथ जोड़कर स्तुति प्रार्थना करते हैं और एक बार देखते हैं जलसाई नारायण के रूप में, तो अद्भुत अद्भुत भगवान के ऐश्वर्य महिमाओं को देखा और देख करके वे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं जो कुछ भी समझ नहीं सका, आपके तत्व दर्शन मेरे विचार और बुद्धि से परे हैं, मैं जो कोई जाने जाने सो मैं मन वचन वाणी के द्वारा मैं आपको समझ नहीं सका, हे प्रभु आप इतनी कृपा कर दें इस ब्रजभूमि में मुझे तीन दुर्बलता होकर के कहीं जन्म हो जाए, कहीं एक पत्थर का टुकड़ा होकर के जन्म हो जाए, ऐसी वे प्रार्थना करते हैं। आज आप लोग कोई यदि ब्रजभूमि में गए जहाँ प्रेम की भूमि, जहाँ उन्होंने प्रेम का आस्वादन किया और आज भी करते हैं, आज भी उनकी बंसी बजते हैं, आज भी उनकी लीलाएं चल रही हैं। इन्हीं कथा के साथ मैं रखता हूँ।
आप लोगों ने पुतना का उद्धार के संबंध में सुना। एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान को उनका तो है, वो निराकार है। बहुत से लोग आजकल निराकारवादी हैं, क्रिश्चियन लोग निराकारवादी, हमारे मुसलमान भाई लोग भी निराकारवादी, भगवान की मूर्ति को नहीं मानते। बौद्ध लोगों का वैसा ही है, जैनियों का भी विचार वैसा ही है, केवल हमारे सनातन धर्म ही भगवान का रूप मानते। इसके लिए थोड़ा सा बतला दू, समझा दू, जो आप लोग ठीक हैं वो लोग गलत हैं। कैसे? रूप शब्द है, गुण शब्द है, आकार शब्द है। इसमें उपसर्ग लगाकर और रूप निर्गुण निराकार बनता है। निराकार शब्द से आकार नहीं बनता और रूप शब्द से रूप नहीं बनता, गुण शब्द निर्गुण शब्द से गुण नहीं बनता, बल्कि गुण आकार रूप इत्यादि से ही ये शब्द बनते हैं। इसलिए मूल में भगवान का रूप है। यदि भगवान का रूप नहीं है तो इतने रूप कहां से आए? भगवान ने सृष्टि की, इसको सत सब कारण बात कहते हैं, कॉज एंड कॉज एंड एक्शन थ्योरी। मैया का रूप है, पिता का रूप है तो बेटे का रूप है, माता पिता ना मिले तो बेटा होगा, उसका रूप कहां से आएगा? तो जगत के माता पिता तो कृष्ण है, भगवान है, तो उनका रूप नहीं है तो कहां से इतना रूप आ गया? आम के बीज से आम का पेड़ होता है, इमली के पेड़ से इमली का बीज से इमली का पेड़ होता है। बिना किसी बीज का कोई पेड़ हो जाए तो नहीं होगा। इसलिए हमारे भगवान को कहा गया है पूर्णम अदम पूर्णम इदम पूर्णा पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णम एव
पूर्णम।
हमारे भगवान इंफिनिटी है, पूर्ण है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, पूर्ण माइनस पूर्ण इज इक्वल टू पूर्ण। ये भगवान है, परिपूर्ण है, उनका रूप है, गुण है। इसलिए बाइबल में भी लिखा गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, गॉड ने मनुष्य को अपने रूप के समान बनाया बनाया। कुरान के हदीस में भी यही है, इन्ना लाह खलाका मिन सूरत, भी भगवान ने अपने सूरत के समान मनुष्य को बनाया। इसलिए सभी धर्मों में ऐसी बातें हैं, यदि मूर्ति नहीं है तो जैन की मूर्ति बना करके उसकी पूजा क्यों करते हैं? जयपुर में जाइए लाखों बन रहे हैं जैन की मूर्ति, महावीर की और बुद्ध की, लाखों मूर्तियां और बनती है। कैसे? हमारे ठाकुर जी की मूर्ति इतनी बड़ी लंबी ऊंची नहीं है, वो 20-20 फुट 25 फुट लंबी ऊंची बनती है। यदि भगवान का रूप ही नहीं है तब क्रिश्चियन लोग चर्च क्या बनाते हैं? उसमें कौन रहेगा? हवा रहेगी? मस्जिद की क्या जरूरत है? यदि खुदा अल्लाह का रूप ही नहीं है तो इसकी जरूरत क्या है? खुले आकाश में करें? ध्यान किसका करते हैं? कोई ना कोई चीज का ध्यान करते हैं, मन से भी जो ध्यान करते हैं वो भी भूत परिस्थिति। श्रेष्ठ है, भूतों की पूजा है। इसलिए हमारे सनातन धर्मावलंबी कृष्ण का जो सबसे सुंदर रूप है, मनोहर मुक्तकारी रूप है, उसका भजन करते हैं। वे सभी रूपों में आते हैं, वही वही अल्लाह है, वही खुदा भी है, वही गॉड है, वही सब कुछ है। एक बार जेसस कृष्ण जो का जेसस इंडिया में आए, बचपन में वृंदावन में गए, फिर जगन्नाथपुरी गए और सब घूम करके तब फिर अपने देश में गए। वृंदावन आए तो सब लोग कृष्ण कृष्ण उनको कह रहे हैं, राधे राधे कृष्ण कृष्ण। जब जगन्नाथपुरी गए तो कृष्ण को कोई कृष्ण भी कहते हैं, किंतु अधिकांश वहां के जो बाशिंदे हैं उनको कृष्ण कहते हैं, कृष्ण से ही कृष्ण। और नीचे जाने पर क्रिस्ट, और वही जबकि अंग्रेजी भाषा में उधर गए तो वही क्राइस्ट का है। तो ये कृष्ण से ही कृष्ट, क्रिस्ट और क्राइस्ट। लोग समझ नहीं पाते हैं, भगवान तो दो है नहीं, अल्लाह खुदा सृष्टि करने वाले एक ही है, चाहे वो विश्व ब्रह्मांड की सब कहीं भी सृष्टि करते हैं। भाषा भेद से उनका नाम ही ऐसा होगा, देश भेद से उनका नाम। इसलिए आप लोग ठीक हैं, ऐसा गर्व अनुभव करेंगे, हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं, कृष्ण के उपासक और सचमुच में एकांतिक रूप में उनकी उपासना। प्रेम के कैसे वशीभूत हो जाते हैं आपने देखा, जसोदा के बेटे होकर के आते हैं, प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं आंशिक रूप में तो देवकी के गर्भ में आते हैं, वही अब कौशल्या के गर्भ में आते हैं राम के रूप में, वही कभी बामन के रूप में आते हैं। इस प्रकार से हम लोगों पर कृपा करके आते हैं। इसलिए हम लोगों का सौभाग्य है कि भगवान के जितने भी रूप हैं हमारे भारतवर्ष में, विशेष करके वृंदावन अयोध्या ये सब देख रहे हैं, सब पूजिया है इस भारतवर्ष में। इसलिए हम लोग गर्व अनुभव करते हैं, विदेश से देखिए हमारे साथ में सब आए हैं 600 लोग, अभी वृंदावन परिक्रमा होगी, आप लोगों को भी निमंत्रण है, उसमें 700-800 की हजारों विदेशी आएंगे, देशी आएंगे, सब लोग मिलकर के हम वृंदमंडल की परिक्रमा करेंगे और साथ साथ में भागवत का प्रवचन होता जाएगा, कौन कौन कहाँ कहाँ निकाले, उसकी पवित्र धूलि लगने से भी हृदय पवित्र हो जाएगा। कृष्ण अपने प्रेम को रिन्यूअल करते हैं, हम कोई लाइसेंस लेते हैं तो उसका रिन्यूअल फिर से वर्ष में एक बार उसका रिन्यूअल करते हैं, नया कर नवीनीकरण। कृष्ण भी अपने प्रेम का रिन्यूअलीकरण करते हैं, नवीनीकरण, कभी पुतना आ जाती है, कभी तृणावत, कभी शकटासु, और फिर गोपियां अपने हृदय से कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती, उनमें प्रेम नया नया प्रकाश है। ऐसे प्रेमों में से उनकी लीलाओं में से एक दाम बंधन लीला है, बहुत सुंदर, जिसमें जसोदा मैया ने सृष्टि करने वालों के ईश्वर पर ब्रह्म श्री कृष्ण को भी बांध दिया। आज तक किसी ने किसी भी इतिहास में किसी भी शास्त्र में उनको बांधा नहीं, किंतु जसोदा मैया ने बांध दिया और लठिया दिखा करके बेतरी मालूम किसको, पर ब्रह्म को, जिसको जिसका नाम लेने से भय भी दूर हो जाता है। और वो प्रभु जो सुधा मैया के डर से रोते हैं, अभिनय नहीं करते। इसके संबंध में रसानंद ब्रह्मचारी जी आपको दामोदर लीला का श्रवण कराएंगे, किंतु समय रखेंगे 6:15 बजे के अंदर में सब शेष होनी चाहिए, क्योंकि धर्म अंधकार हो जाता है और बहुत से उपद्रव होने की संभावना रहती है। इसलिए संक्षेप में बताएंगे, अभी और लोग वक्ता भी बोले।
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय कृष्ण कैसे, कृष्ण जिसको जितान कहते हैं, अजो विसर न अभयात्मा भूताना भी ईश्वर विसर प्रकृति समाधिष्ठाय संभवामि आत्माय। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, मैं अजो हूं, मेरा जन्म नहीं है, लेकिन अजो होते हुए भी, जन्म रहित होते हुए भी, लेकिन अपना योग माया के पास ले करके भक्तों को विभिन्न रूप में आनंद देने के लिए अपना योग माया को आश्रय करके जगत में जन्म लेता हूँ और अपना लीलाओं के द्वारा भक्तों को मन को प्रेम रसों में संपूर्ण रूप में डुबो देता हूँ। इसलिए कृष्ण कैसे प्राप्त होते हुए भी गोकुल को गली गलियों में कैसे कन्हैया कैसे लीला करते हैं, तो जो लीला दर्शन करने के लिए स्वयं शंकर भी स्वयं आते कैलाश से। कहते हैं प्रभु जी बहुत सारी लीला देखाएंगे, मत सतगुरु मबराहर विष्णु बामन प्रभु जी बहुत बता रहे हैं, लेकिन मैंने यह लीला नहीं देखा जो अजय होते हुए भी जो जन्म ग्रहण किया, सारा दुनिया को पालन हार होते हुए भी जिसको स्वयं मैया यशोदा भी लाल लड़ा रही है, स्वयं मैया यशोदा जो दूर चुपला रही थी और उनको प्रेम के वशीभूत होकर के कृष्ण कैसे बाल्य चरित्र करते हैं, स्वयं शंकर जी दर्शन करने के लिए ब्रज गोकुल में स्वयं शंकर जी आते हैं और मैया यशोदा बड़ी कठिनाई से बड़ी कठिनाई से उन्हें अपना बाल गोपाल और कृष्ण कन्या को दर्शन देती, बड़ी कठिन से केवल एक झलक दर्शन देती, उसी में ही शंकर अपना जीवन को कृत कृत मानते हैं और वो हरते हैं, प्रभु जी की एक झांकी का दर्शन मिला है, ऐसे प्रभु की लीला है। इसलिए कृष्ण कन्या जब गोकुल में आए, अभी कन्या हर ब्रज गोपियों को घर घर में मक्खन चिराते हैं, सारा दुनिया का मालिक होते हुए घर घर में मक्खन चुराते हैं और ऐसे मक्खन चुराते हैं जिस लीला को द्वारा कृष्ण कन्या ब्रजवासियों को पूरा लीला रस में डुबो देते हैं। अभी रोजाना ब्रज गोपियां आकर के मैया यशोदा के पास की शिकायत करती है, कहते मैया तेरे लाला तो घर घर में हमारा मक्खन चुराता है। मैया बोली मेरे लाला तुम्हारे घर में मक्खन चुराता है क्या? हाँ यशोदे, मेरा विश्वास नहीं है, हमारा घर में कहीं दूध दही कमी है, नंद बाबा के नए लाल गया है, अभी नंदगांव में जाके वहां पर एक छाछ का कुंड है, इतने छाछ हुआ करता था पीने वाले पहले थे उसको, उसमें हमारे तालाब में कुल्हा देते थे, अभी भी वो एक छाछ कुंड है, उनको घर में दूध दही की नदी बहती है, अरे आप लाला तुम्हारे घर घर में मक्खन चुराता है, मेरा विश्वास नहीं। मैया यशोदा बोली अगर एक बार मेरे को रंगे हाथों से पकड़ा दो फिर तो मैं मानूंगी। ठीक है, अभी कृष्ण कन्या ससुर से कन्या तो मक्खन चुराने आ गए थे कि तो मक्खन चुराएंगे, अभी ससुर से आते कन्या आए इधर देखे उधर देखे पीछे देखे, कहते कोई तो है नहीं, कहते ना कोई है नहीं, लेकिन वो गोपी घर को दरवाजा के पीछे छुप करके बैठे, यही प्रभु की लीला की वैचित्रता है, जो घटगटवासी है, जो विश्व ब्रह्मांड का कण कण विद्यमान है, लेकिन उनको क्या पता थी ब्रज गोपी कोने में बैठी, यही उनको विचित्र लीला है। अभी कृष्णा जब धीरे धीरे अंदर गए और मटकी उतार करके जब मक्खन खाए, इतने में तो ब्रज गोपी हाथ को पकड़ ली, आज तो उनको मैया यशोदा के पास में लेकर जाऊंगी। कन्हैया बोले गोपी एक बार छोड़ दे, कभी आएगा भी नहीं, कभी आऊंगा नहीं, तेरे पांव पकड़ता हूँ, तेरे सांस की पांव पकड़ता हूँ, तेरी नंद की तेरे पति की, मेरे को तो छोड़ दे, तेरे छोड़ दूँ, मैया रस्ता मानती नहीं, आज तो जरूर लेकर के दिखाऊंगी। अभी जोर जबरदस्ती पकड़ करके लाई, जब उनको पकड़ करके लाई, ऐसे जो माया लीला तेरा सामने नंद बाबा बैठे हुए, नंद बाबा तो जेठ लगते हैं, अभी जेठ को देख करके उसका पीछे से दरवाजा से दे उनको कन्या लेकर गांव, इतने में अपना लिंगोट उतार दे और कृष्ण के ऊपर बड़ी कमरा लाए, जब पीछे दरवाजा से वो ब्रज गोपी आ करके जोर जोर से उन्हें जो आवाज लगाई, कहते मां जसोदे देखो तू तो मानती नहीं, तेरे लाला मक्खन चुराता है, देख आज तक अपने हाथों से जो पकड़ करके लाई, लेकिन मैया यशोदा कन्या को अंदर में थपथप लगा करके सिला रही थी। मैया यशोदा क्या बोल रही है बाबी, भैया दुष्टा कैसे निकल कर का कहा बात है, कहते भैया तुम नहीं मानती हो, तेरे लाला मक्खन चुराता है, आज तुम्हें पकड़ करके लाई हूं। लेकिन यही कृष्ण विचित्रता है, जब उसको कपड़ा पहन दी और अपना सुंगटों को खींची, इतने में कृष्ण उतर गए। अभी भैया दुष्टा मुझे कन्या मेरे घर में सो रहे हैं, जब जसोदा बाहर निकल कर गाई, देखिए अपना बेटे को ही चोर बना करके लाए हैं। बोले क्या तू पादरी मत गई, अपना बेटे को तुम चोर बना करके लाए हो, मेरे लाला के घर के अंदर में सो रहा है। इतने में कन्या आंख को मसल के हुए रो रो कर गाय, तो भैया देखी ये झूठ मूठ का कैसे मेरे नाम में शिकार लगे थी, मैं तो घर छोड़कर कभी जाता ही नहीं, मैं तो घर में रहता हूँ, तू तो मेरे को सवेरे होते ही मधुबन में भेज देती हूँ गया चलाने के लिए, वहां से दिन भर हम घूमते घूमते आकर के रात को तेरे गोद में सोता हूँ, बता कब मैंने मछली चुराया। तो वो की आश्चर्य में पड़ गई, ये कैसे अभी तक मैंने कन्या को लेकर गाई, ये बदल गया कैसे। वो की बड़े सारों में पड़ गई। जब वापस जा रही थी, कृष्ण दूसरे रास्ता में घूम करने वाले, कहते गोपी कहा बात है, मैंने तुम्हारे कितने पांव पड़ा, हाँ तुमने मेरा छोड़ी नहीं देखा, आज तुम अपना बेटे को ही तो चोर बना करके लाए हो, दूसरे दिन जाकर मेरे को पकड़ करके लाओगे ना, देखो कि अपना खसम को ही चोर बना करके लाए हो, इसलिए कभी लाओगे। बोले कहती हाँ कान पकड़ती हूँ, ऐसे मैया को पास में रोज शिकायत करती है, रोज ऐसी शिकायत करती है। जसोदा सोचती कहा बात है, ये क्यों प्रजो क्या रोज रोज इसी बोलती है, ऐसे और एक को भी बोलती है, एक को भी बोलती है, देखा आज तुम कन्या को पकड़ करके नहीं लाऊंगी, घर में ताला बंद करके तुमको बुला करके दिखाऊंगी, सचमुच से उसने ताला बंद करके कृष्ण को चुरा के समय आए, जब आए देखा तो कृष्ण को उनको घर में खेलते हुए, गोपिका आश्चर्य पड़ गई, क्या ब्रज में कृष्ण दो कृष्ण हो गए। फिर तो ये आश्चर्य बात दूसरे घर में बताने के लिए गई तो देखा उसको घर में एक गोपी उनको गोद में बैठा करके खिला रही है, और चक्कर पड़ गई कृष्ण कितने तीसरे घर में गए तो देखा उनको सखा के साथ में खेलते हुए। जब चौथे घर में गई इतने में कन्या बोलती है, ब्रज गोपी तू ये मत सोच मैं केवल तुम्हारे घर में आकर के पत्थर चुराता हूँ, ऐसे नहीं, मैं जितने ब्रज गोपियां जब दधि मंथन करती है मेरे को बड़े प्यार से बुलाती है, कहते आज मेरे अंगना में आई और नंदलाल आई और गोपाल का सेवक रस है, इसलिए ये मां वात्सल्य रस से श्रीदान रस की सर्वश्रेष्ठता इसमें गोपियों के हृदय में कृष्ण का जो भावना है प्रिया प्रियतम भावना है प्रिया की भावना है और भैया का अगर वात्सल्य है इसलिए जिसको हृदय में जितना प्रेम हो उसका वस्तु भगवान को उतना ही अच्छा लगता है। इसलिए कृष्ण दुर्योधन प्यार करके वे विदुर को घर में केले का छिलका खाते हैं जब विदुर आए बोले पागल तू क्या कर रहे हो इसी मन को चौंकी कि तुम केला को फेंकते जा रहे हो तुम तो छिलका खिला रहे हो। जब उन्होंने केला खिलाई कहते विदुर पहले केले का छिलका मुझे आनंद आ रहा था अभी केले में वो आनंद नहीं आ रहा। मैं केला नहीं खाता हूँ केला छिलका नहीं खाता हूँ मैं तो केवल प्रेम ही खाता हूँ भगवान प्रेम के ही होते हैं। इसलिए अभी मैया जसोदा ये सोच रहे कि अपना हाथों से राज रानी पद्म में भी देखो कृष्ण के लिए इतना ममता है राज रानी पद्म में भी कुछ ऐसी गैया थी जिनका धूप से कमल फूल की खुशबू निकलता था बर्तन गंगा गैया मैया जसोदा अपना हाथ से दूध निकाली और अपना हाथों से अच्छे तरह से गर्म की और उनको अच्छे तरह से जमाई जमा करके अभी मैया जसोदा सवेरे सवेरे उठ करके क्योंकि पहले जो मक्खन निकालते थे अगर धूप निकल आया तो फिर मक्खन नहीं निकल निकलेगा पिघल जाएगा इसलिए सवेरे सवेरे उठ करके कन्हैया भी सो रहे हैं अभी सवेरे सवेरे उठ करके मैया जसोदा कहते जानी जानी जो जो लीला को कृष्ण बचपन में की है कहते उसी लीला को स्मरण करते हुए मैया जसोदा भी दधि मंथन कर रही है करते समय कृष्ण का पादे चक्र को गा रहे हैं और उनको हाथ में घंटा है हाँ और जब दधि को ऐसे ऐसे जब खेसती है वहां से जो आवाज आ रही थी माना मृदंग मृदंग में हम जो ढोलकी बजाते हैं उसका एक तरफ में धीकता उसमें आवाज आता है। इसका तात्पर्य यह है कहते उनका जीवन धिकार है धीकता मतलब उसका जीवन धिकार है किसका जीवन है जिसको ये इंसान का जीवन मिला लेकिन ये देवदुर्लभ जन्म पा करके अपना जीवन में जो उन्होंने भजन नहीं किया उनका जीवन का अधिकार है और उनके हाथ में जो कंकड़ थी मानो को मजरा की काम कर रहा था। इसलिए मैया जसोदा एकदम प्रेम के तन्मय हो करके कन्हैया को लीला कीर्तन करते हुए कहते गोविंद धामो दरबार भूख लग रहा है मेरे को दूर पिला दे भैया भी लाला खराब हो जाओ धूप निकला आएगा तो मक्खन नहीं निकलेगा, लालसा भूल जा, फिर तुम्हें भूख लग रहा है तो रुक जा। इतने में कृष्ण सामने आके रई को पकड़े, जानते हैं अगर ये काम नहीं बंद करूंगा तो कि मेरे को दूध नहीं पिलाएगी, दोनों हाथ से रई पकड़ी। भैया जोशिका देखी हालात बड़े चालाक है, इतने में भैया जोशिका के भैया को गोद में लेकर के दूध पिला लेंगे। जब दूध पिलाते समय इधर चूल्हे के ऊपर में वो दूध गर्म करने के लिए दूध चंदूर में गर्म कर रहे थे, गर्म करते समय वो दूध ये सोच रहा है, वो दूध अभी उबल रहा है, ये दूध का भावना है कि देखो लगता है मैं आज कृष्ण सेवा में नहीं लग पाऊंगा। कहते क्यों? कहते भैया जोशिका का स्तर में संपूर्ण खीर समुद्र है, खीर जो समुद्र जो हम नाम सुनते हैं, मैया जोशिका का स्तर की एक भूत है, मैया जोशिका का स्तर में तो सारा विश्व ब्रह्मांड का दूध है, और कृष्ण का पेट कितना बड़ा, छोटे मोटे नहीं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड कृष्ण को पेट भरकर भी, हाँ कृष्ण का पेट भी भरने वाला नहीं, मैया जोशिका का दूध भी समाप्त होने वाला नहीं, फिर मैं क्या कृष्ण सेवा में नहीं लग पाऊंगा। इसलिए दूध ये सोच करके वो ऊपर ऊपर करके ये आग में कुदने जा रहा था। कहते ऐसे जीवन तो बेकार है, ऐसे जीवन को तो आग में कूद करके जीवन को समाप्त कर देना चाहिए अगर ये जीवन कृष्ण सेवा में अगर नहीं लगे। लेकिन वो तो जसोदा है, जसोदा किसी जसोदा मतलब जो जस देती है, सभी को सम्मान देती है, सभी को कृष्ण सेवा में जो लगाती है जसोदा, जसोदा वही दूध, कोई चिंता मत करो, इधर पूत उपन रहा है उधर दूध भी उपन रहा है, बल दूध थोड़ा रुक जा तेरे को मैं कृष्ण से नाम लगाऊंगा। तो कन्हैया थोड़ा उतर जा तो दूध उपन रहा है। कन्हैया बोले अभी तक तो मेरा आधा ही पेट उपन रहा है, अभी बोल तो तू उतर जा। वो कृष्ण उतरना ही नहीं चाहते, बगल जैसे बगल लिए, मैया जसोदा ने एक झटका लगा के बोले चुप बैठो यहाँ पर, जो जबरदस्ती गोद से उतार कर बैठा किया और उधर तो दूध रखा करने के लिए गई। कन्हैया को बड़ा क्रोध आ गया, बड़ा क्रोध आ गया, आधा पेट भी भरा नहीं, जसोदा ने गोद से उतार दी, फटने लगा क्रोध, मैं आम लाल हो गया, क्या करूं, देखा इतना बड़ा मटकी को हम अभी पलट देता हूँ फेंक देता हूँ, लेकिन वो मटकी इतना बड़ा था उसको फेंक नहीं सका, वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर को लेकर के नीचे से ऐसे मारे वो मटकी फूट गई। अभी तो मंथन कर रही थी, अभी तो बन गई मटका जैसे, अभी तो धीरे धीरे मटका पूरा घर में फैल गया। कृष्ण जब मटका फैल गया, कृष्ण ने देखा मैया जसोदा अभी आगे तो पिटाई गई, मटकी उसने फोड़ दिया, पिटाई गई, इतने में कृष्ण वहां से भागे, वहां से भाग करके पास में दूसरे घर में गए, देखा ऊपर में छीके के ऊपर में मक्खन है, उन्होंने मक्खन को खड़े कर लिया और उसको ऊपर खड़े होकर के मक्खन को उतार रहे हैं, और जितने बंदर और जितने कौवा थे उनको बुला लिया। कौवा कौन है? कहते राम लीला में काम भूसी के परिवार है। कहते बंदर कौन है? कहते राम लीला में उनको सीता का उद्धार के समय में जब बंदर ने मदद की, कहते बंदर भैया आ जाओ, रामलीला में तो मैंने कुछ खिला नहीं खाया, अभी कृष्ण लीला में तो मक्खन खिला रहा हूँ, अभी सारे बंदर को कौवा में एक बैठे करके सबको बंदर कौवा को सब मक्खन वितरण करने लगे। इतने मैया जसोदा वहां दूध को रखा करके आई, देखी पूरा घर 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 का मट्ठा फैला हुआ है, मैया जसोदा देखी मटकी फूटी गई तोड़ी नहीं गई, मट्ठा कहाँ से निकलाया, नीचे देखा कि छेद कर दी। मैया जसोदा को बड़ा क्रोध आ गया, कभी मेरे सांस की जवान की सांस के समय से ये मटकी दो सर घी पी पी कर इतना एकदम ठोस हो गया तो उसको तोड़ दिए, अभी तो मैया जसोदा को बड़ा क्रोध आ गया, क्योंकि बंदर गया कहाँ है, वो चोर गया कहाँ, कहते चोर तो चोरी करता है, ऐसे कुछ निशान छोड़ कर नहीं जाता जो सियार उसको पकड़ लेते, लेकिन कृष्ण पराधर तत्पर जो भी वो भी कुछ निशान छोड़ कर गए, क्योंकि कृष्ण जब हम खड़े थे जब घर में पूरा फैल गया बैठा, कृष्ण के चरण में भी लगा, और कृष्ण जब धीरे धीरे गए उनका सुंदर चरण छाप भी बढ़ते बढ़ते गया था। कभी प्रश्न होता है क्या कृष्ण को ये पता नहीं था, मैया जैसा आ करके मेरे को ढूंढेगी और मेरा चरण जो छाप पड़ा हुआ है और इसी को देख करके मेरे को पकड़ लेगी, क्या तुम पता नहीं था कृष्ण को, वो तो भगवान है, लेकिन ये जोग माया के द्वारा अपना जो सर्वज्ञता को भुला देते हैं, और एक शिक्षा देते हैं, अगर मुझे कोई भक्त सच दीन से अगर मुझे पुकारे, हृदय से अगर मुझे प्राप्त करने की कोशिश करे, मैं उनके लिए कुछ निशान छोड़ कर जाता हूँ। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, देशान छपत जुटना भजता प्रीति पूर्वक ददामि बुद्धि जगत जनाम जानते थे। तब जो सतत युक्त होकर के हृदय से मुझे प्राप्त करने के लिए अगर कोई भक्त मुझे पुकारे, उसको कहिए बुद्धि जो मैं स्वयं प्रदान करता हूँ, मैं स्वयं उनका रास्ता बना करके रखता हूँ। अगर मैं स्वयं पकड़ में नहीं आऊँ, विश्व ब्रह्मांड में कहीं से किसी ने नहीं हुए जो कि अपना चेष्टा से मुझे पकड़ पाए। इसलिए भक्त अगर पूरे तो पर उसको रास्ता भी बना कर रखते हैं। कभी भैया जसका वह चरण छाप को देख करके धीरे 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 जसका चल रहे। अभी कहीं तो कृष्ण मथन को वितरण कर रहे थे, इतने में एक एक कौवा उड़ने लगे, एक एक बंदर भी पीछे पीछे सरक रहे हैं। इधर कृष्ण ने देखा, क्या बात है, ये बंदर कौवा भी भाग रहे हैं। मैया तो आ रही थी, सचमुच से पीछे देखे तो मैया आ ही गई, अभी मैया पकड़ने वाले हैं। लेकिन कृष्ण पहले से मेन रोड का दरवाजा खोल कर रखे थे, अगर मैया आई तो मैं भाग जाऊंगा। अभी मैया को पीछे देखे तो इतने में कृष्ण छलांग लगा करके मेन रोड की तरफ भागने लगे, क्योंकि कृष्ण ये सोचे घर भैया तो घर की बहू है, और मेन रोड के ऊपर में अगर मैं चला जाऊं तो घर की बहू कैसे मेन रोड पे जाएगी, वो तो जाएगी नहीं। इसलिए कृष्ण ये सोच करके, लेकिन उसी दिन था दीपावली, सारे जितने ब्रजवास लोग वो केवल बड़े लोगों को छोड़ करके सब गोवर्धन सब दीपाव दान के लिए वहां चले गए थे, वो कोई नहीं थे। भैया जो सोचा थे, तुम ये सोच रहे हो मैं घर की बहू हूँ और बाहर नहीं निकल सकता, आज कोई नहीं, आज तो तुम हम पकड़े ही आज तुमको। मैया उसको पीछे भागने लगी, भगते भगते कई सौ ताव जब नहीं पकड़ पाए, जिनको ऋषि मुनियों का जो सूतक हृदय, जिनको कर और कर साल, जिनको चरण कमल को ध्यान में लाने के लिए कोशिश करते हैं, जिन चरण कमलों को वो हृदय में नहीं ला पाते, आज वो फरार कर सकते को मैया दुष्दास को पीछे भाग रही पकड़ने के लिए। अभी जब मैया दुष्दा पीछे भाग रही थी, इतने में कन्या तो छोटे भाग रही है, मैया दुष्दा थोड़ी तो मोटी है, अभी थोड़ी दूर गई तो हाफ गई। इतने में कृष्ण ने देखा मैया को कितना भगा, अभी मैया दुष्दा बेड़ी में और चोटी में सुंदर फूल भी ग्रंथन करके रखी थी। अभी जब मैया दुष्दा भाग रही थी, एक एक फूल भी गिर रहा था, फूल भी बता रहा है मैया चिंता मत करो, आज सब हम मिल करके कन्या को पकड़ेंगे, वो ऐसे ही धूम मचाता है। लेकिन कृष्ण ने मैया दुष्दा बोली, कन्या खड़े रहोगे कि नहीं, अभी डंडा मारू, अभी मारू, इधर देख। इतने में कृष्ण पीछे देखा, मैया तो अभी डंडा मारने वाले हैं। इतने में कृष्ण ऐसे करके कृष्ण वहीं पर खड़े हो गए। इतने में मैया जसदा कन्या को पकड़ लिए तो कृष्ण तो भय डर गए, हो ना हो मैया मेरे को विचार नहीं करे, मैया मेरे को विचार नहीं करे, जिसको दर्द मारे सारे काम करता है। अभी वो काल है, जो काल है मैया जसदा को डर रहे। अभी मैया जसदा हाथ पकड़ करके लाई, कहते कन्या सब सच बता, कहते बताओ, कहते बताओ ये मटकी किसने तोड़ी, बताओ किसने मटकी तोड़ी। कहते मैया मैं सच बताऊं ना झूठ बताऊं, मैं झूठ का क्या बात, सच बता। कहते मैया जब दूध उबल रहा था, जब तुम भागते हुए गई ना, पता नहीं तुम प्यार में इतनी बड़े बड़े क्या कौला पहन कर रखी, तुम तो जल्दी को मारे गई तो कौला से ठोकर लग गया तो वो मटकी फूट गई। मैया जस्ता को बड़ा आश्चर्य लगा, देखो कितना झूठ बोल रहा है इतना छोटा बच्चा, कहते मेरे प्यार की कौला से फूट फूट गई। कहती बताओ कि बंदर को कौवा किसने मटकी खिलाया, कहते जिसने बनाया उसने खिलाया, बनाया किसने, उन्होंने तो बनाया, कि जिसने बनाया उसने खिलाया। कहते तुम बहुत बड़ा चोर है, तुम बड़ा चोर हो। कहते भैया मेरा पिता तो साहूकार नंद बाबा है, और कृष्ण का एक कोई मामा थे जिसका नाम था चोर, को कृष्ण ने सुन लिया था। बोले भैया मेरे खानदान तो साहूकार का, मेरे पिता तो नंद बाबा है, वो तो राजा है, तुम्हारी खानदान में कोई चोर होगा, मेरे खानदान का मैया यशोदा को देखो कितना छोटा बच्चा बात क्यों करता है। कहते कन्हैया ये बता तू तो बहुत बड़ा चोर तुम्हें बंदर हो। हाँ तुम्हें तो बंदर हो। कन्हैया बोले मैया अगर मैं बंदर हूँ तो छोड़ दे, मैं जंगल में बंदर के साथ में रहा करूंगा, मेरे को छोड़ दे, तो ऐसे मेरे को मार के रखी है। मैया यशोदा देखी कन्हैया अपना क्रोध में, हाँ अगर छोड़ दू तो बुढ़ापा में करेगी संतान दिलाने, अभी अगर ये सचमुच से जंगल में चला जाएगा तो इसलिए मैया यशोदा सोची अभी इसको मैं बांध करके रख देती हूँ, बच्चा है छोटे बाद में क्रोध अपने आप चल जाएगा। इसलिए मैया यशोदा अपना बेड़ी चोटी को जो रस्सी को द्वारा बांध कर रख रही थी उसी को द्वारा ये कुकर को साथ में बांधने के लिए कोशिश की, लेकिन उसमें दो अंगुल कम पड़ गए। दूसरे गोपी को बोला और एक रस्सी ले आओ, और एक रस्सी ले आओ, उसको भी दांत लगाई, उसमें भी दो अंगुल कम पड़ गए। जितने रस्सी थी सारा रस्सी के रस्सी में दांत लगा दी, लेकिन उसमें दो अंगुल किसी तरह से पूरी नहीं हुई। यशोदा तो आश्चर्य में पड़ गई, क्या हो गया। लेकिन यशोदा शरीर से पसीना पसीना निकल गया, एकदम परेशान तो हो गई, किसी तरह से बांध नहीं पाई। ब्रज गोपियां खड़ी होकर के हंसी उड़ा रही थी। तो यशोदे लगता है तेरे लाला को पपा लगे ये बंधन भाई के लिए। कहते कैसे लिखा है मेरे कोख से जन्मल है, मैं नहीं बांध सकती, आज तो बांध दे करके छोड़ूंगी। लेकिन जब किसी तरह से बांध नहीं पाई मन मुझे अपना गृह देवता ने सहला लगा। कहते प्रभु आप मेरे लाल बचाओ, मेरे कोख से जन्म लिया आज इसको मैं बांध नहीं पा रही हूँ। जब उन्होंने सरगा करना दी और माता का परिश्रम को भगवान देख करके कहते माता परिश्रम दृष्टवा कृपया असीत सबने, माता का परिश्रम और उनको भगवत सरगा वर्णन देख करके भगवान बंधन स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जहाँ जिसका बाहर नहीं जिसका भीतर नहीं कैसे उसको काम सकती थी। अभी मैया जिसका कन्हैया को हाथ छोड़ करके घर का थोड़ी काम काज में गई है, इधर दूसरे घर का काम काज कर रही, इधर सखा लोग आ गए। सखा लोग आकर के उन लोगों ने कन्हैया को बोले सखाओं खोल दो हम जाकर खेल कूद करेंगे। सखाओं ने बड़ी कोशिश की इसको खोलने के लिए लेकिन किसी तरह से खोल नहीं पाई। कहते क्यों, पर वो कोई साधारण दांत नहीं थी, वो प्रेम की दांत है। हाँ भगवान कौन मान सकता है, वो था प्रेम, वात्सल्य प्रेम की दांत है। अब ये सखा लो वो प्रेम से का नीचे है, हाँ वो दांत कैसे खोल सकते, बड़ा कोशिश किया। इतने में कृष्णा उन्होंने दूर में देखा दो वृक्ष है, जमराज ने देखा नारद मुनि का अभिसंवाद से वो वृक्ष बनकर खड़े। और नारद जी ने कहा था जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में आएंगे उनका चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। अभी नारद जी का कथा स्मरण करते हुए सखाओं को कहा सखाओं उसको पीछे का धक्का लगा, ये सखा ने धक्का लगाए कृष्ण गोकुल पर चलते चलते वृक्ष को बीच में जब गए वो उखड़ अटक गया। कृष्ण थोड़ी सी खेस से इधर में दोनों का दोनों वृक्ष दान कर गिरे, इतने जोर से आवाज हुई मानो कोई बज्रपात बज गया, सारे ब्रजवासियों के उधर उधर भागे। जब वहां पर आकर के देखा नंद बाबा कोई अंधी तूफान नहीं ये वृक्ष कैसे उलट गया, आश्चर्य पड़ गए। सखाओं ने कहा बाबा बाबा ये कृष्ण ने ही वृक्ष को तोड़ दिए, किसी विश्वास नहीं किया। नंद बाबा आकर के उन्होंने दांत बंधन को खोल दिए और अपना पकड़ से लड्डू निकाल करके कृष्ण को हाथ में दिए। कन्हैया ये बताओ किसने ये तुमको बांधा, कहते मैया ने बांध दे। यशोदे इतना निष्ठुर कैसे बन गई, अभी ये वृक्ष गिर पड़ता तो अभी क्या होता। नंद बाबा को बड़ा क्रोध आ गया, यशोदा भी वहां पर आकर के बड़ी दुखी हो गई, मैंने इन हाथों से मैंने कैसे बांध दिया, अगर सचमुच से पेड़ अगर गिर पड़ता तो मेरे लाला ही पड़ जाता, बड़ा दुखी हो गई। नंद बाबा को बड़ा क्रोध आ गया, नंद बाबा बोले लाला किसने बांधे, मैया खोला किसने, बोले पापा ने बाबा ने, बोले पापा किसके पास में रहोगे, कहते बाबा के पास में रहूंगा, मेरे को मैया मारती है कोई भी मैया के पास की जाऊंगा नहीं। नंद बाबा को बड़ा क्रोध आ गया, कृष्ण बलराम लेकर ब्रह्मा के घाट में चले गए और भरोस दूध में मिश्रित मिला के कृष्ण को खिलाए, सरदार को खिलाए। लेकिन मैया यशोदा इतनी दुखी हो गई, सवेरे सवेरे रसोई नहीं बनाई, अगर यशोदा रसोई नहीं बनाई तो फिर इसलिए आज पूरा ब्रज के ब्रज लोग पूरे भूखे हैं, सबर से शाम तक इसने खाए नहीं, नंदबाबा भजन नहीं किए, जसोदा भी भजन नहीं की। अभी जब शाम हो गया अभी नंदबाबा के गोद में कन्हैया और दाव दे जा रहे, अभी जितने ब्रजवासी इतने बड़े बड़े बड़ी गोपियां आ गई, नंद पत्नियां आ गई, दाव दिया खड़े दाव दिया दाव बताओ जा नंदबाबा का गोद से कन्हैया को ला करके जसोदा की गोद में छोड़ दे। अभी बलदेव प्रभु कृष्ण को पकड़ने के लिए गए तो कृष्ण ऐसे झटका मारे बलदेव प्रभु के गिर पड़े। अभी ब्रज गोपियों ने कहा कन्हैया मैया के पास नहीं आओगे तो तुम्हें नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैया मेरे को मारती है मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैया को कहते सोगे कहा कभी मतलब हुआ था गोद में कभी खाओगे क्या कहते पिताजी हाँ हरस दूध में बिस्तर मिला करके पिला देंगे। अगर भैया के पास नहीं जाओगे कभी नहीं तो ब्रज गोपियों ने कहा अगर भैया ऐसे हो गए तो अगर भैया मर गई तो फिर क्या होगा। इतना बोलते ही कृष्ण को इतने रोना आ गया भैया 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 मर जाएगी भैया भैया करते करते नंद बाबा गोद से आकर के भैया जसोदा गोद में ले गए और भैया जसोदा कृष्ण को गोद में पा करके फूट फूट करके रोने लग गई और जितने ब्रजवासी थे सब रोना प्रारंभ कर दिया। कृष्ण ऐसे ही ब्रजवासियों को अपना लीला रस के द्वारा उसमें डुबो करके रखते थे। तुलसी कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम।
ऐसे ही कृष्ण की बहुत मधुर लीलाएं हैं।